हाँ
इसमें क्या यातना है? वज्र के समान कठोर कांटों वाले सेवल के वृक्ष में लटकाकर उसको लटका देते हैं पेड़ में, और उस वो पेड़ सेवल का है। सेवल के पेड़ जानते क्या होता है? उसमें कांटे कांटे होते हैं पेड़ में, उसके कांटे विशेष रूप से वज्र के समान कांटे हैं, उसमें लटका देते हैं उस पेड़ में है? और यमदूत उसको नीचे की तरफ खींचते हैं रस्सी से, तो क्या करता है वो पेड़ में लिपटता है कसके, जब नहीं तो गिर जाएगा। तो गिरने से बचने के लिए वो उस पेड़ में कसके लिपटता है, तो क्या होता है उसका पूरा शरीर कांटों से छिन्न भिन्न हो जाता है, कितना कष्ट है। फिर चौदहवां नरक है बेतरणी, इसमें कौन जाता है? शासन का जो अधिकारी सच्चे धर्म में बाधा डालता है उसे यमदूत वेतरणी नामक नरक की नदी में फेंक देते हैं, जहां पर जल के जंतु उसे खाते हैं तथा उसके चारों ओर मल मूत्र पील रक्त केश नख हड्डी मज्जा मांस और चर्बी भरी रहती है। वो नदी बहुत अशुद्ध पदार्थों की होती नदी है, उसमें उसको डाल देते हैं। पंद्रहवां नरक है पुयोद, जो व्यक्ति सदा वेश्यावृत्ति में ही लगा रहता है उसे यमदूत पुयोद नामक नरक के समुद्र में गिरा देते हैं, जो भरा है किससे? मल पीप श्लेष्मा लार इन चीजों से भरा है, उसी में डाल देते हैं। उसे समुद्र में इन्हीं वस्तुओं को खाना पड़ता है, कितना अशुद्ध है। सोलवां नरक है प्राण रोध, इसमें कौन जाता है? जो व्यक्ति अपने सुख के लिए व्यर्थ ही पशुओं की हत्या करने में लगा रहता है उसे यमदूत प्राण रोध नामक नरक में डाल देते हैं, जहां पर उसकी उसी प्रकार से हत्या की जाती है जिस प्रकार उसने पशुओं की हत्या की थी।
हाँ,
तो ये सोलवां चल रहा है प्राण रोध, इसमें कौन जाता है? जो व्यक्ति व्यर्थ में पशुओं की हत्या करता है, क्यों? आनंद के लिए, मनोरंजन के लिए है? तो इसमें जाता है, और इसमें क्या होता है? उसी प्रकार से उसकी हत्या की जाती है जैसे उसने पशुओं की हत्या की थी, उसको याद आता है अपना कर्म। फिर सप्तमा नरक है बैससन, बैससन इसमें कौन जाता है? जो व्यक्ति पूजा का दिखावा करने के लिए पशुओं की हत्या करता है उसे मृत्यु के पश्चात वैसन नामक नरक में रखा जाता है, जहां पर यमदूत उसे अपार कष्ट देकर अंत में उसका वध कर देते हैं। अठारहवां नरक है लाला भक्ष, क्या समझे? लाला भक्ष, इसमें कौन जाता है? जो उच्च परिवार का व्यक्ति उच्च परिवार की अपनी पत्नी को अपना वीर्य पीने को विवश करता है उसे लाला भक्ष नामक नरक की एक वीर की नदी में गिरा दिया जाता है, जहां उसे सदा वीर्य ही पीना पड़ता है, कितना अशुद्ध है। उन्नीसवां नरक है सार में आदन, जो व्यक्ति दूसरों के घरों में आग लगाते हैं या दूसरों को विष देते हैं उन्हें सार में आदन नरक में रखा जाता है, जहां पर वज्र के समान दांतों वाले 720 कुत्ते उसे काटते हैं। एक कुत्ता भी जो ना कितना खतरनाक होता है अगर भौंकता है तो, और 720 कुत्ते उसे काटते हैं। इसमें कौन जाता है? इस नरक में कौन जाता है? जो व्यक्ति दूसरों के घरों में आग लगाता है या दूसरों को विष खिलाता है वो इस नरक में जाता है। आप 20वां नरक है अविचिमत, इसमें कौन जाता है? जो व्यक्ति व्यापार में या दान में हमेशा झूठ बोलता रहता है उसे अविचिमत नामक नरक में 800 मील ऊंचे पर्वत की चोटी से फेंका जाता है, और कैसे? सिर नीचा करके उसको फेंका जाता है। कितना ऊंचा पहाड़ है, 800 मील ऊंचा पर्वत, और सिर के बल उसको नीचे फेंक देते हैं। इस नरक की पथरीली भूमि जल की लहरों के समान मालूम पड़ती है, परंतु इसमें जल नहीं होता है, लगता है कि पानी होगा। पानी होगा तो सिर के बल चलो बच जाएंगे, है ना, लेकिन सिर के बल उसको जब फेंकते हैं वो पानी जैसी लहरें दिखाई पड़ती हैं, लेकिन वो पानी नहीं होता है, वो होता है पथरीली भूमि होती है वो, है ना। तो क्या हाल होगा उसका, सिर के बल 800 मील ऊंचाई से उसको जब फेंकते हैं तो क्या हाल होता उसका, है ना। इस नरक में कौन जाता है, कौन बताए, है हाँ, व्यापार में या दान में हमेशा झूठ बोलता रहता है। 21वां नरक है अयापान, इसमें कौन जाता है, जो उच्च परिवार का व्यक्ति मद्यपान करता है, मद्यपान मतलब शराब पीता है, उसे अयापान नामक नरक में जाना पड़ता है। अया का मतलब है लोहा, लोहा पिलाते हैं उसको, कैसे, तपा करके, गला करके, जो शराब पीता है उसको गला हुआ लोहा पिलाते हैं, कैसे, जहां यमदूत उसकी छाती पर चढ़कर उसके मुख में तप्त पिघला लोहा पिलाते हैं। 22वां नरक है क्षार करदम, जो व्यक्ति नीच होकर भी अपने से जन्म में ऊंचे व्यक्ति का सम्मान नहीं करता, कोई अपने से जन्म में ऊंचा है, तपस्या में ऊंचा है, शिक्षा में ऊंचा है, आचरण में ऊंचा है, आश्रम में भी ऊंचा है, और सम्मान नहीं करता है। क्यों सम्मान नहीं करता है, घमंड के कारण सम्मान नहीं करता है, उसे क्षार करदम नामक नरक में यमदूत सिर के बल नीचे गिराते हैं और कठिन यातनाएं देते हैं। 23वां नरक है रक्षोकन भोजन, इसमें कौन जाता है, जो लोग काली को मनुष्य की बलि चढ़ाकर उसका मांस खाते हैं उन्हें रक्षोकन भोजन नामक नरक में भेजा जाता है, जहां पर राक्षसगण उसे तलवार से काटकर उसका मांस खाते और आनंदित होते हैं। वो मरता नहीं है, लेकिन राक्षस लोग उसका मांस काट करके खाते हैं और मजा लेते हैं, खुश होते हैं, कितना कष्ट है। 24वां नरक है शूल प्रोत, इसमें कौन जाता है, जो व्यक्ति पशुओं या पक्षियों को धोखे से फंसाकर उन्हें पीड़ा देकर सुख प्राप्त करता है, उसे शूल प्रोत नामक नरक में यमदूत क्या करते हैं, नुकीले भालों द्वारा छेदते हैं उसके शरीर को, और उनके शरीर को तीखी चोंच वाले पक्षी चारों ओर से नोचते हैं। शूल प्रोत नरक। 25वां नरक है दंद सुख, इसमें कौन जाता है, जो व्यक्ति सर्प के समान हमेशा क्रोध करता और दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है। सर्प क्रोध करता है, इस बहुत क्रोध होता है सर्प में, सर्प को आप चाहे जितना दूध पिलाओ, एक थोड़ा सा गलती से भी अगर पैर पड़ जाए तो वो इतना काट लेगा, वो इतना गुस्सा होता है सांप, वो सब भूल जाता है कि आपने उसकी कितनी सेवा की, कितना एहसान किया, तो सर्प, तो जो व्यक्ति सर्प के समान हमेशा क्रोध करता रहता है और दूसरों को पीड़ा पहुंचाता है, उसे दंड सुख नामक नरक में 5 या 7 फन वाले सर्पों के द्वारा कटवाया जाता है, दंड सुख। 26वां नरक है अवट निरोधन, जो व्यक्ति अन्य प्राणियों को अंधे कुएं या कमरे में बंदी बनाकर रखते हैं उन्हें अवट निरोधन नामक नरक में अंधे कुएं में रखा जाता है, जहां पर विषैले धुएं से उसका दम घुटता है। इस नरक में अवट निरोधन में क्या होता है कि अंधे कुएं में उसको रख करके विषैला धुआं उस कुएं में पहुंचाते हैं तो दम घुटता है उसका, है अवट निरोधन बहुत कष्ट है। 27वां नरक है पर्यावर्तन, इसमें कौन जाता है, जो गृहस्थ अपने घर में आई अतिथि को क्रोध की दृष्टि से देखता है उसे पर्यावर्तन नामक नरक में जाना पड़ता है। इसमें क्या यातना होती है, जहां पर कठोर चोंच वाले पक्षी कठोरता के साथ उसकी आंखें निकाल लेते हैं। घर में अपने अतिथि को जैसे कठोर आंखों से देखता है, तो इस नरक में क्या होता है, जो पक्षी हैं कठोरता के साथ उसकी आंखें निकाल लेते हैं बाहर, है ना, बहुत कष्ट है। 28वां नरक है सूची मुख, इसमें कौन जाता है, जो धनी व्यक्ति घमंड के कारण दूसरों के साथ दुष्ट व्यवहार करता है उसे सूचीमुख नामक नरक में रखा जाता है, जहां पर यमदूत उसके संपूर्ण शरीर को धागे से सिलते हैं। सूचीमुख कितना कष्ट है। आगे, अभी तक जितने प्रकार के नरकों का वर्णन हुआ है उनमें किसी भी प्राणी की मृत्यु नहीं होती है, यद्यपि किसी किसी नरक में उसका शरीर पूरी तरह से कुचल जाता है या उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, परंतु शीघ्र ही उसका शरीर पुनः स्वस्थ हो जाता है। तो देखा, मौत नहीं है वहां, यातना बहुत है, चिल्लाता रहता है वो व्यक्ति कष्ट के कारण, लेकिन मरता नहीं है। इस शरीर में तो कोई व्यक्ति मर जाएगा, एक मिनट तक चिल्लाएगा फिर मर जाएगा, है कि नहीं, एक मिनट से ज्यादा जिंदा नहीं रह सकता है। लेकिन वहां पर वो चिल्लाता रहता है लेकिन मरता नहीं है, बहुत कष्ट है। इस प्रकार वह प्राणी अपने कर्मों के अनुसार लाखों वर्षों तक विभिन्न प्रकार के नरकों में यातना भोगता है। इस श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद लिखते हैं, वर्णाश्रम धर्म की पद्धति के अनुसार मृत्यु के पूर्व मनुष्य को पाप कर्मों के लिए प्रायश्चित करना होता है। जो पापात्मा है उसे इस विधि का उपयोग अवश्य करना चाहिए। ऐसा किए बिना मनुष्य निश्चित रूप से नरक भेजा जाएगा, जहां उसे अपने पाप कर्मों के लिए कष्टमय जीवन बिताना होगा। श्रीमद् भागवत भी श्रील सुखदेव गोस्वामी इसी प्रकार की बात कहते हैं। क्या कि मृत्यु के पूर्व प्रायश्चित करना जरूरी है अगर नरक में नहीं जाना चाहते हो। परंतु परीक्षित महाराज ने अत्यधिक बुद्धिमान होने के कारण सुखदेव गोस्वामी से निवेदन किया, हे महाराज, यदि पापी व्यक्ति की चेतना अत्यंत दूषित हो तो प्रायश्चित करने के बाद वह पुनः पाप करता है, जिस प्रकार से हाथी नदी में स्नान करके पुनः अपने शरीर में धूल डाल लेता है। ठीक है ना, प्रायश्चित किया और फिर से वही पाप किया तो फायदा क्या हुआ था। इसके उत्तर में सुखदेव गोस्वामी ने अंत में कहा, केचित केवल या भक्त्या वासुदेव परायण अगम धनवंती कार्तने निहार में भास्कर, भागवत 6:1-15। अर्थात कुछ लोग श्री कृष्ण के आश्रय में अनन्य भक्ति के द्वारा अपने पापों को उसी प्रकार संपूर्ण रूप से समाप्त कर देते हैं जिस प्रकार सूर्य के द्वारा कोहरा पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। इस संबंध में सुखदेव गोस्वामी ने अजामिल की कथा सुनाई, जो अत्यंत पापी होते हुए भी अपने पुत्र को नारायण के नाम से पुकारा करता था। जिस समय यमदूत उसे पकड़कर नरक में ले जाने के लिए बांध रहे थे, उस समय भी अपने पुत्र में आसक्त होने के कारण उसने अपने पुत्र को नारायण कहकर पुकारा। यद्यपि यह नाम शुद्ध नहीं था, क्योंकि जामिल ने भगवान को नारायण कहकर नहीं पुकारा था, परंतु फिर भी यह नाम का आभास था। यह कहा जाता है कि भगवान के नाम के आभास में भी पापों को मिटाने की पूरी शक्ति है, इसलिए नाम के इस आभास से भी अजामिल पापों से पूरी तरह मुक्त हो गया, तथा उसकी रक्षा करने के लिए आए विष्णु दूतों ने यमदूतों से कहा कि ये अजामिल एक जन्म के नहीं बल्कि करोड़ों जन्मों के पापों से मुक्त हो गया है, क्योंकि इसने हरि के पवित्र नाम का उच्चारण किया है। इस प्रकार से हम भी यदि अपनी दैनिक भाषा में एक दूसरे को पुकारने के बहाने भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करें तो नरक में जाने से बच सकते हैं, परंतु इसके लिए हमें नाम के 10 अपराधों से बचना होगा। इन दस अपराधों में सातवां अपराध नाम के बल पर पाप करना है। यदि कोई व्यक्ति सोचता है कि भगवान के नाम में पापों को दूर करने की कितनी शक्ति है जितनी शक्ति किसी भी पापी के पास पाप करने की नहीं है, तो फिर मैं भी पाप करता रहूं, तथा भगवान के नामोच्चारण से पापों को मिटाता भी रहूं तो यह भयानक अपराध होगा तथा इस प्रकार की मनोभावना से व्यक्ति को अवश्य ही नरक की यात्राएं प्राप्त होंगी। इसलिए श्रील प्रभुपाद ने जिस हरे कृष्ण आंदोलन को स्थापित किया है उसमें भक्तों को सदा ये शिक्षा दी जाती है कि वे सदा 10 अपराधों से बचकर रहें तथा दीक्षा के समय भक्तों को भगवान से संबंधित नाम दिए जाते हैं ताकि अपनी दैनिक भाषा में भी वे लोग एक दूसरे को पुकारने के बहाने भगवान के अथवा भगवान से संबंधित पवित्र नामों का उच्चारण करते रहें ताकि नरक में जाने का भय न रहे। हरे कृष्णा। तो अब कोई प्रश्न है किसी का या मैं प्रश्न करूं? इनका प्रश्न है कि इस भौतिक संसार में जब किसी को कष्ट मिलता है तो भगवान को याद करता है, तो नरक में जिनको कष्ट मिलता है क्या वे भगवान को याद करते हैं? नहीं, ये कहना भी सही नहीं है कि इस भौतिक संसार में जिसको भी कष्ट मिलता है वो भगवान को याद करता है, ये भी सही नहीं है। क्योंकि भगवान ने कहा है नमाम विस्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, वो कष्ट भोगते हैं लेकिन वो भगवान को नहीं पुकारते, भगवान को याद नहीं करते हैं। कितने लोग हैं जो भगवान को याद करते हैं कष्ट में? अगर उनकी पिटाई होने लगे, एकदम से कोई पीटने लगे तो कितने लोग हैं जो भगवान को पुकारेंगे? वो बोलेंगे दैया, हाय दैया, हाय दैया, हाय मैया, दैया मैया, बाप रे बाप, अरे मरा, अरे मरा, अरे मार डाला, अरे मार डाला, वो चिल्लाएगा। लेकिन कौन है जो भगवान का नाम लेगा? भगवान कहते नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा, जो दुष्कृति है वो भगवान का नाम नहीं लेते हैं। हाँ, तो हमारा भी जो है ना ऐसा अनुभव है कि अगर बहुत संकट में पड़ जाए एकदम से नहीं आता है भगवान का नाम। मान लीजिए आप गाड़ी में बैठे हैं और अभी आप देखते हैं कि आपकी गाड़ी में दुर्घटना होने वाली है, उस समय आप क्या चिल्लाओगे हरे कृष्णा? नहीं है ना। तो इसका मतलब है कि जो है हर कोई नहीं भगवान का नाम लेता है दुख में कष्ट में। दुष्कृति लोग भगवान का नाम नहीं लेते हैं। चार प्रकार की पुण्यात्मा है जो भगवान को याद करते हैं, एक आर्त, दूसरा अर्थार्थी, तीसरा जिज्ञासु और तथा ज्ञानी। तो चार प्रकार के जो पुण्यात्मा है तो ये भगवान को भजते हैं, है ना। तो सबसे पहला जो पुण्यात्मा है वो आर्त है। कष्ट जब कष्ट होते हैं तो वो भगवान को याद करता है, है ना। तो ये पुण्यात्मा का लक्षण, पहला लक्षण तो ये है कि कष्ट में वो जरूर भगवान को याद करेगा। जो पापी है वो भगवान को याद नहीं करेगा, वो दोष लगाएगा, भगवान को दोष लगाएगा या भाग्य को दोष लगाएगा, समय को दोष लगाएगा कि टाइम ऐसा खराब चल रहा है ना। लेकिन अपने को दोष नहीं देता, है ना। लेकिन जो पुण्यात्मा है वो मानता है कि मेरे अपने कर्म के कारण मुझे कष्ट मिल रहा है और भगवान अगर चाहे तो मेरा कष्ट दूर कर सकते हैं, तो वो जो है पुण्यात्मा है। आर्तो जिज्ञासुर, और ज्यादा पुण्यात्मा होता है तो कष्ट में तो भगवान को याद करता ही है, लेकिन साथ साथ आर्तो जिज्ञासुर जिज्ञासा भी होती है उसकी जानने की भगवान को, भक्तों का संग भी करता है। आर्तो जिज्ञासुर अर्थार्थी, इसके बाद और ज्यादा पुण्यात्मा होता है तो कष्ट में तो भगवान को याद करता ही है, इसके अलावा वो भगवान को जानना भी चाहता है, यानी भगवान के प्रति जिज्ञासु भी है। उसके अलावा और भी कारण होता है उसका भगवान को याद करने का। अब वो क्या है? अर्थार्थी, उसको संसार की कोई चीज हासिल करना है इसलिए। और फिर उससे जब जो पुण्यात्मा होता है वो होता है ज्ञानी। मतलब इस भौतिक संसार में हमेशा कष्टों को देख करके वो क्या चाहता है? ब्रह्म ज्योति में मिल जाना चाहता है, भगवान में मिल जाना चाहता है ना। तो ये जो है उससे ज्यादा पुण्यात्मा है, लेकिन तो भी शुद्ध भक्त नहीं है, ठीक है ना। आपका प्रश्न, इनका प्रश्न है कि कोई व्यक्ति पहले जीवन में पाप करता है, उसके बाद में फिर वो दीक्षित भक्त हो जाता है और भगवान को याद करता है, हाँ तो क्या फिर वो इस जीवन के अंत में भगवान के धाम जाएगा? हाँ, अजामिल की कथा है। अजामिल बहुत पापी था, हाँ? लेकिन बाद में फिर क्या हुआ, हाँ वो भक्त बन गया, वो शुद्ध भक्त बन गया। भगवान विष्णु के मंदिर में वो दिन रात भगवान का चिंतन करता है, भगवान का ध्यान करता था, है ना। तो फिर जो है चार विष्णुदूत आए विमान लेकर के, और उसको विमान पर बिठाया और भगवान के धाम ले गए। ठीक है, भगवान ने कहा है गीता में, मामी पार्थ विपाश्रित ये विष्णु पापियों ने यहाँ स्त्रियों वैश्या तथा शूद्रास्ते ब्यांति परामगति, जो भी पापियों ने है वो भी परमगति प्राप्त करेंगे। और कोई प्रश्न किसी का? सातवां नाम अपराध है क्या? नाम के बल पर पाप करना, है ना। तो हमने बताया है? इसमें क्या है, कोई व्यक्ति सोचता है कि भाई नाम में तो नहीं सकती है कि कोई पापी इतने पाप कर नहीं सकता है। नाम में जो पाप दूर करने की शक्ति है वो इतनी ज्यादा है कि कोई पापी इतने पाप सोच भी नहीं सकता है करने के लिए, जितने पाप है? नाम मिटा देता है। तो मैं क्या करूं, फिर तो बड़ा मजा है, मैं जितने चाहूं उतने सब पाप करूं, मजा लूं, है? और बाद में नाम ले लूंगा तो सब नाम मेरे पाप खत्म हो जाएंगे, है ना। तो बहुत भयानक अपराध है, ठीक है ना, नाम के बल पर पाप करना। ठीक है, इनका प्रश्न है कि कोई भक्त है बिजनेस कर रहा है तो उसमें झूठ बोलना पड़ता है तो उसका फिर क्या होगा? नहीं, यहां पर बताया जो हमेशा झूठ बोलता है, जो हमेशा झूठ ही बोलता रहता है, कहीं झूठ बोलने की आवश्यकता है तो झूठ बोल सकता है। तो व्यापार में झूठ बोलना पड़ता है, बिना झूठ बोले आपका जीवन निर्वाह नहीं होगा। तो प्रभुपाद ने उदाहरण दिया, जैसे दुकानदार है, हैं? तो वो कोई सामान बेचता है तो वो कहता है कि मैं आपसे बिल्कुल मुनाफा नहीं ले रहा हूं, हैं? तो भाई साहब आप मुझसे बिल्कुल मुनाफा नहीं ले रहे हो, तो फिर आपका कैसे जीवन निर्वाह होता है कि नहीं। तो सीधी बात है कि मुनाफा तो ले रहा है वो, लेकिन वो कहता है भाई साहब आपसे बिल्कुल मुनाफा नहीं ले रहा हूं, जबकि भाई साहब कोई जानता भी नहीं है, कुछ भी कोई जान पहचान नहीं है, लेकिन तो अभी वो बड़ी जान पहचान बनाता है कि आपसे मैं मुनाफा नहीं ले रहा हूं, बाकी तो मुनाफा लेता हूं, आपसे मुनाफा नहीं ले रहा हूं, ये आपको जानता नहीं है, हैं? तो क्यों नहीं मुनाफा ले रहा है, हैं? तो इस तरह से जो ना किसी भी ग्राहक को जो ना अपना माँ बाप बना लेते हैं कि आपसे मैं मुनाफा नहीं ले रहा हूं, लेकिन मुनाफा तो ले रहा है। लेकिन अगर वो ऐसा ना कहे हैं? तो ग्राहक को चढ़ जाएगा कि क्यों मुनाफा ले रहे हो, इतना मुनाफा क्यों ले रहे हो, नहीं इतना नहीं, इतने का है, इतने का दो, मुनाफा बिल्कुल मत लो, है ना। तो इसलिए उसको जो है झूठ बोलना पड़ता है। तो जीवन निर्वाह के लिए झूठ बोलना मैं दोष नहीं है। अच्छा, तो मैं प्रश्न करूं, इस श्लोक में जो अर्जुन ने भगवान को जनार्दन कहा है तो इसके तीन अर्थ हमने बताए हैं, तो कोई बता सकता है कि वो तीन अर्थ कौन कौन से हैं? तो पहला अर्थ है जनार्दन, ये जो नाम है विष्णु सहस्त्र नाम में आया है, जिसमें बताया गया है कि सब प्रकार की विद्याएं शिल्प आदि कर्म है, वेद शास्त्र विज्ञान, ये सब जनार्दन से उत्पन्न हुए हैं, है ना। तो अर्जुन का ये कहना है कि हे जनार्दन, आपसे चली आ रही से परंपरा के द्वारा ही मुझे ये सूचना प्राप्त हुई है कि जो मनुष्य अपने कुल धर्म को नष्ट कर रहे हैं वे नरक में जाते हैं, है ना। तो जनार्दन का ये पहला अर्थ है, ठीक है। दूसरा अर्थ जनार्दन का क्या है? वह पुरुष जिससे भक्तगण कल्याण की याचना करते हैं कि हमारा कल्याण करो, हमारा कल्याण करो, तो जनार्दन उसको भी कहते हैं। हाँ, तो यहां पर जनार्दन दो शब्दों से बना है, जन और अर्दन। जन शब्द का मतलब हुआ भक्तों का समूह है, अर्दन का मतलब याचना करना या प्रार्थना करना, तो जनार्दन का मतलब क्या हुआ? जिससे भक्तगण हमेशा प्रार्थना करते रहते हैं, याचना करते रहते हैं, जनार्दन। फिर जनार्दन का तीसरा अर्थ क्या है? वह पुरुष जिसको भक्तगण कष्ट की स्थिति में सदा पुकारते हैं। तो अर्जुन जो है कष्ट में पुकार रहे हैं भगवान को, क्यों? तो पूरा कुल नरक में जाएगा। इसलिए अर्जुन जो है बहुत चिंतित होकर के भगवान का नाम ले रहे हैं जनार्दन। ठीक है, धन्यवाद। निरंतरा श्रीमद् भगवद गीता के जगत गुरु शीला प्रभुपाद के श्री श्री राधा पार्थ सारथी ललिता विशाखा के श्री श्री गौणताय भगवान के श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की श्री श्री शुद्ध दामोदर भगवान की जगत गुरु शिला प्रभुपाद की।
हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम हरे राम 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 हरे हरे। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama. Hare 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 Hare